हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। दरअसल रास्ते भर अक्षिता जी और उनके साथियों के हाथों का खिलौना बने हुए थे अभ्युदय प्रताप सिंह बुंदेला, पर यहाँ पर तो अपने पिता की गोद में आते ही उनके कंधे से अपना मुँह छुपा लिया था, जैसे वो किसी को भी नहीं पहचानते। जरा देख लो तो इसे, कितनी जल्दी पार्टी इन्होंने बदल डाली। इतनी जल्दी तो कोई राजनेता भी पार्टी नहीं बदलता। अक्षिता जी की टीम के मेंबर रोनित, सुदर्शन और मृगा बोल रहे थे, मैंने तो पहले ही कहा था, सारे काम माँ करती है और गुण ये अपने बाबा सा के गाते हैं। अक्षिता जी ने बुरा सा मुंह बनाया, आखिर हमारे कलीजे के टुकड़े जो हैं। अखिल प्रताप खुलकर मुस्कुरा दिए, हाँ हमें तो जैसे इन्होंने आया समझ रखा है। अक्षिता जी मुंह में ही बोली। गाड़ी में से निकलकर अक्षिता जी ने एक पूरी नज़र गेस्ट हाउस के ऊपर डाली और फिर अखिल प्रताप के चेहरे के ऊपर। एक पल के लिए अखिल प्रताप और अक्षिता जी की नज़रें आपस में मिली थीं। क्या कुछ नहीं था अक्षिता जी की नज़रों में, पर जो कुछ था उसे अखिल प्रताप अच्छी तरह से समझ रहे थे। अपनी पूरी रियासत, अपना पैलेस, अपना गेस्ट हाउस और साथ में एक होटल के साथ साथ एक खूबसूरत कॉटेज होने के बावजूद भी अखिल प्रताप सरकारी गेस्ट हाउस में रह रहे थे। पर इस वक्त अखिल प्रताप उनके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने नज़रें चुराकर अपना पूरा ध्यान अपने बेटे में लगा दिया था। पर इधर विक्रम के लिए तो कई सवाल खड़े थे, जहाँ से कि वो चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं चुरा सकते थे। आशी ने जो उन्हें शॉर्टकट रास्ता बताया था वो पैलेस से होकर जाता था, और विक्रम का मन पूरी तरह से इस पैलेस को अच्छी तरह से देखने का था। आशी भी विक्रम के साथ पैलेस की तरफ से ही जाना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि पैलेस उसको खींचता है। इसके अलावा उसको जो इन्क्यूजन्स आते थे, जो सपने आते थे, उन सब चीज़ की जड़ तक पहुँचना चाहती थी। साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और इतना जानती थी कि जब तक इन सब चीज़ों की जड़ तक नहीं पहुँच जाएगा, इनका उद्गम नहीं खोजा जाएगा, इनका निदान नहीं किया जा सकता। पर इसे साइकोलॉजी ने उसे बहुत ज़्यादा घुमाया भी था। इसी साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट में उसने पढ़ा था कि जिस काम को करने से जितना ज़्यादा रोका जाता है, किसी भी इंसान का मन उसके लिए उतना ही ज़्यादा भागता है। तो पैलेस उनके लिए ऐसी ही जगह थी जहाँ पर कि सपने में भी जाना मना था तो सपने वहीं के आते थे। फिर दूसरे में बचपन से ही उसके हॉन्टेड होने की इतनी सारी कहानी सुन चुके थे कि बाल मन खुद ब खुद कई कहानियाँ बोल लेता है जिसमें कि वो खुद उसका हीरो होता है, ऐसा साइकोलॉजी के फैक्ट कहते थे। और आशी के कंडीशन में तो आशी खुद को हीरोइन के रूप में देखी थी, इसलिए आशी इन सब चीज़ों को सीरियस लेकर भी सीरियस नहीं ले पाती थी। वरना घर वाले पहले ही सेटिंग में या तो उसे सीधे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास छोड़ देते या फिर पागलखाने में भर्ती करा आते। ये आशी का निजी ख्याल था, इस कारण वो इस मैटर पर घर में किसी से कोई भी बात करने से बचती थी और अपनी सारी शंकाओं का समाधान किताबों में, लेक्चर में ढूंढती थी। लेकिन किसी भी चीज़ को थ्योरी में पढ़ना और उसको प्रैक्टिकल में करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। विक्रम प्रताप की गाड़ी जैसे जैसे पैलेस के रास्ते की तरफ बढ़ने लगी, आशी का दिल दहलने लगा था। आखिर शत्रुपा देवी के साथ हुआ हादसा भी तो इसी पैलेस वाले रास्ते में ही हुआ था, और उसके बाद अस्पताल में जो इन्वेस्टिगेटर आए थे वो भी थे। अब तो आशी के पसीने छूटने लगे थे कि वो विक्रम के साथ उधर जाकर सही कर रही है या गलत। कुछ खलबली तो विक्रम के मन में भी हो रही थी, पर आशी की तरह उनके दिल में डर नहीं था। विक्रम तो पूरी तरह से डिटर्मिंड था, जो होगा सो देखा जाएगा, कम से कम सामने तो आएगा। और इसी सब चीज़ों में गाड़ी पैलेस तक पहुँच चुकी थी। पैलेस के मेन दरवाजे पर पहुंचते ही विक्रम ने अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी की और उसके बाद उसका रोकने का इरादा था, लेकिन आशी ने तब तक एकदम से फैसला लेते हुए स्टीयरिंग पर अपने हाथ रख दिए थे। नहीं नहीं विक्रम सा, रोकेगा मत। पर क्यों? विक्रम को हैरानी सी हुई, अभी तो तुम्हारा पैलेस देखने का मन था। और फिर अचानक से विक्रम को जाहिर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और विक्रम का चेहरा देखकर आशी को भी बुरा लगा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, बस रोकिएगा मत प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर चलिए, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा, बड़ी मासा की भी हालत अच्छी नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचना चाहिए, पैलेस तो हम आराम से भी किसी और दिन आकर देख लेंगे, अभी तो हमारे पास चाबियाँ भी नहीं हैं, आशी बहाना बनाते हुए बोली। विक्रम का मन कुछ हट्टा सा हुआ था, लेकिन बड़ी माँ का नाम सुनते ही वो यहाँ रुकने का इरादा छोड़ चुका था। इसके बाद उसने तेज़ी से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो गाड़ी अखिल प्रताप के सामने से होती हुई निकल गई। अच्छा हुआ आप चले आए, हम कब से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। पार्किंग में ही दामिनी जी उन्हें उनका इंतज़ार करती हुई मिल गई थीं। और तुम तुम कैसे चली आई? नव्या जी ने आशी को विक्रम के साथ देखकर हैरानी से पूछा। मैं साथ गई थी तो साथ वापस चली आई, आशी बोली। सच बताओ, आज कॉलेज गई थी भी या नहीं? नव्या जी को संदेह सा हो रहा था। उन्होंने पूछताछ करने के लिए आशी की बाँह पकड़ ली थी, जबकि विक्रम उलझ कर रह गया था कि ये दोनों औरतें क्या इन लोगों के इंतजार में यहाँ खड़ी हैं या फिर पूछताछ करने के लिए। नव्या, छोड़ो इसको, बाद में बात करना। विक्रम सा, जल्दी चलिए। दामिनी जी ने विक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिया। उनकी हड़बड़ाहट देखकर विक्रम को अपना संदेह सच साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो तेजी से शत्रुपा देवी के कमरे की तरफ भागा। तभी उनके कमरे में जोर से टेबल के गिरने की आवाज आई। विक्रम ने रुककर दामिनी जी की तरफ देखा तो दामिनी जी इधर उधर देखने लगीं। हर हर महादेव।